Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि परिवर्तन एक नियम है। कोई भी चीज परिवर्तन अगर नहीं हो रही है तो वो स्टैग्नेंट हो जाती है। हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ आपके ज़िंदगी में होना चाहिए कि आपको परिवर्तन के साथ में ढलना ज़रूरी है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं बीके मोहन सिंगल भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो।
धन्यवाद
भाई जी। परिवर्तन जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रकृति ये उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। प्रकृति के बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि आपकी जो कॉन्फ्रेंस है जिसके बारे में हमने सुना है, जिसका नाम है सेलिब्रेटिंग नेचर, इसके बारे में कुछ संक्षेप में बताइए।
आपने ठीक कहा, हर चीज परिवर्तनशील है
जी।
और प्रकृति तो विशेष ही, क्योंकि जनरली प्रकृति जो समझा जाता है ये हमारे पांच तत्व जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश प्रति क्षण परिवर्तित होते ही रहते हैं और इसका आभास हमें जीवन में सदा होता ही है। जहाँ तक कॉन्फ्रेंस की बात है, सेलिब्रेटिंग नेचर, तो इसके पीछे भावार्थ यही है कि नेचर शब्द को हम कैसे सदा सेलिब्रेट करते रहें। नेचर शब्द के दो अर्थ हैं, एक है मनुष्य की इंटरनल नेचर, आंतरिक स्वभाव, और एक है बाहरी नेचर, जो पांच तत्वों की बात हो रही थी और जिनसे हमारा ये शरीर बना हुआ है।
हाँ जी।
तो दोनों नेचर के बीच में आपस में बहुत गहरा संबंध है, और ये अगर दोनों नेचर के बीच का संबंध जब हम जान लेते हैं तो जिंदगी जीना, जैसे आपका ये जिंदगी बने आसान, बहुत सहज हो जाता है।
अच्छा।
तो इसलिए बाहर की प्रकृति, उसके साथ अगर हम सदा जीते रहते हैं, इसके साथ हमारा जीवन, अंदर का जीवन हार्मोनियस रिलेशनशिप में बंधा होता है, तो फिर जिंदगी बड़ा सहज हो जाती है। आज हम प्रकृति के, बाहर की प्रकृति की चीज़ देख रहे हैं कि कहीं पर अर्थक्वेक आ रहे हैं, कहीं भूचाल के साथ साथ सुनामी है, साइक्लोन है, काफ़ी प्राकृतिक आपदाएँ आती जाती हैं, और ये वास्तव में किसी न किसी रीति से हमारी इंटरनल नेचर से संबंध रखती हैं।
अच्छा।
हाँ, इंटरनल नेचर में भी हमारा कई बार क्रोध अग्नि से मनुष्य जैसे जल जाता है, तो ये क्रोध अग्नि जो है ये काफ़ी हद तक बाहर की प्रकृति के आधार पर ही चलती है, और साथ में कहें बाहर की प्रकृति मनुष्य की प्रकृति के आधार पर। उदाहरण के तौर पर एक जमाना था जिसे हम सतयुग कहा करते थे, जब लोग बड़े शांत शीतल मधुर सब प्रकार के उनमें दिव्य गुण होते थे
जी।
तो उस समय बाहर की प्राकृतिक आपदाएं कभी नहीं आती थी,
नहीं।
सुनने में ही नहीं आती। बाहर की प्रकृति भी बहुत शांत शीतल और बहुत मधुर संबंध उसके मनुष्य के साथ हुआ करते थे
जी।
लेकिन धीरे 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 जब मनुष्य की आंतरिक प्रकृति में भी बहुत परिवर्तन आता चला गया, उसके जीवन के अंदर विशेष करके क्रोध अहंकार ईर्ष्या द्वेष नेगेटिविटीज आती चली गई, तो प्रकृति का भी नेगेटिव रूप प्रदर्शित होता चला गया।
करेक्ट।
तो ये एक संबंध जो है ये एक आंतरिक संबंध है, और इस संबंध को किस प्रकार से हम समझना चाहिए उसके लिए ये विशेष करके कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है
जी। भाई जी, प्रकृति की जब हम बात करते हैं, प्रकृति के अंदर में ये जो फाइव एलिमेंट्स हैं, इनकी क्या अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है? अगर आप हमें ये बता पाए तो हम समझ पाएंगे संक्षेप में कि किस तरह से हमारे नेचर से प्रकृति का नेचर कनेक्टेड है।
राइट। देखिए, प्रकृति का एक सूक्ष्म स्वरूप ये शरीर है
जी,
और ये शरीर के अंदर हमारे, फॉर एग्जाम्पल, पानी करीब 70% वाटर जैसा है। अभी रिसेंटली बहुत एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें मनुष्य ने अपने विचारों के आधार पर बाहर के जल को परिवर्तित किया है। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर एमोटो, साइंटिस्ट जापान के होके गए हैं, उन्होंने बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट किया कि सामने पानी के दो गिलास रखे और कुछ दूरी पर, और एक गिलास को एक्सपोज किया अपने पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, हे जल आप कितने कल्याणकारी हो, आपके आधार पर ही मनुष्य का हमारा सबका जीवन चलता है, आप कितना शीतल हो और मनुष्य का जीवन आपके ऊपर किस प्रकार से इतना निर्भर करता है। और जब उसको बहुत पॉजिटिव विचारों से इवन उसकी लेवलिंग भी की गई, तो बड़ा मदर टेरेसा एंड आई थैंक यू, आई लव यू वगैरह ऐसे सॉफ्ट वर्ड से लेवल्स वगैरह भी चिपकाए गए। तो उस वाटर को जब क्रिस्टलाइज किया गया तो देखा बहुत ही अच्छे ऑर्नामेंटल शेप में क्रिस्टल्स वगैरह बने हुए थे और बहुत ही अच्छा आई प्लीजिंग एंड एक्चुअली वेरी एम्फेटिकली वी कैन से कि प्रॉफिटेबली ना, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे इस प्रकार के क्रिस्टल्स बने हुए थे। इसके कंट्रास्ट में दूसरे ग्लास को नेगेटिव थॉट से एक्सपोज किया गया, आई विल किल यू, आई हेट यू लाइक दैट, एंड एडोल्फ हिटलर एंड लाइक दैट ऐसे लेबलिंग की गई, तो देखा गया उसके अंदर बहुत ही जो क्रिस्टल्स बने बड़े ही इरेगुलर शेप के क्रिस्टल्स थे और उनकी भयंकर मतलब शेप्स वगैरह भी थी। तो जब ये हमारे विचार ये इतना दूर रखे हुए पानी को इतना प्रभावित कर सकते हैं, तो हमारे शरीर में 24 घंटा जो पानी रहता है 70% वाटर है, तो उसको तो कितना ना प्रभावित करते होंगे। और इसीलिए आज डॉक्टर भी ये कहते हैं कि हमारी जो बीमारियां होती हैं शरीर में, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, इंसोम्निया, नींद का ना आना, अनेक प्रकार की बीमारियां, वो सब बीमारियों की जो जड़ है ना हमारे विचार है।
बिल्कुल।
इस कारण से अगर हमारे विचार नेगेटिव होते हैं, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, नेगेटिविटी के, तो हमारे शरीर में अनेक बीमारियों का जन्म होता रहता है। तो देखिए जब अंदर का पानी और बाहर का पानी दोनों इस प्रकार से ये प्रभावित होते हैं, तो ये बहुत क्लियरली शो करता है कि दोनों नेचर का, हमारे अंदर के स्वभाव, हमारा विचारधारा, सोचना उसका, और बाहर जो जल रखा गया है उसका, उसमें कितना आपस में गहरा संबंध है।
बिल्कुल।
ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स अनेक तत्वों पर हुए हैं।
अच्छा।
हाँ, दूसरे तत्वों पर, फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी के ऊपर
जी
बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट सिंपल किया गया। हमारा एक रूरल डेवलपमेंट विंग है, तो उसके द्वारा पृथ्वी से हमें सब चीज़ मिलती है, खेती होती है, अनाज मिलता है, फल मिलते हैं। तो जो हमारी खेती होती है आजकल कन्वेंशनली ऑर्गेनिक खेती होती है।
बिल्कुल।
और इसके साथ साथ एक खेती इनऑर्गेनिक भी कुछ लेवल पर कई जगह शुरू की गई है। इसके कंट्रास्ट में एक यौगिक खेती मीन्स योग के द्वारा जमीन को और बीज को एक्सपोज किया जाता है हमारी विचारधारा से।
अच्छा।
हाँ, हे बीज आप कितना, और साथ में धरती माता को ना, कि हे धरती माता आप इन बीजों को ग्रहण कर रही हो, इनके द्वारा ऐसी चीजें उत्पन्न हो स्वास्थ्य के लिए जो बहुत लाभदायक हो। तो ग्रुप में वो करीब आधा घंटा पौना घंटे तक पॉजिटिव थिंकिंग से योग के द्वारा पृथ्वी को भी वो जैसे चार्ज करते हैं और साथ में इन बीज आदि जो बोए जाते हैं, तो देखा गया है कि उनके द्वारा, और ये एक्सपेरिमेंट्स जो कंडक्ट किया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ MOU के द्वारा
जी,
तो MOU के द्वारा उसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी फुली इन्वॉल्व रहते हैं, तो जो प्रोडक्ट होते हैं फिर उनका लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है, इसमें कितना प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं आदि आदि। और देखा गया कि जो नॉर्मल केस में ऑर्गेनिक खेती या इनऑर्गेनिक खेती में जो ये कंटेंट्स होते हैं, उसके कंट्रास्ट में जो लाभदायक कंटेंट्स होते हैं, विटामिन आदि होते हैं, वो सब बहुत ही काफ़ी अधिक मात्रा में पाए गए।
अच्छा।
और जो नेगेटिव कंटेंट्स हैं जैसे क्लोरिस्ट्रॉल वगैरह है और आदि आदि, वो उनको काफ़ी कम मात्रा में पाया गया।
ओके।
तो देखा गया कि हमारी विचारधारा के द्वारा ये बाहर की प्रकृति कितनी प्रभावित होती है, और मनुष्य तो उसका एक छोटा सा स्वरूप ही है बाहर की प्रकृति के पांच तत्वों का।
बिल्कुल।
तो जब ये शरीर प्रभावित होता है तो जहाँ पर मास इतने 700 करोड़ लोग दुनिया वाले रहते हैं, उनकी विचारधाराएं कैसी चल रही हैं, वो बाहर के 5 तत्वों को भी प्रभावित करती है।
इतना उसका भी इफेक्ट पड़ता है।
यस।
ओके।
तो इस कारण से हमारी विचारधारा केवल हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाहर के वातावरण के अंदर भी मनुष्य जब रहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा, जनरली जब हम किसी अच्छी जगह जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कहीं मस्जिद में, गिरजाघर में, बड़े शांति का अनुभव करते हैं।
करेक्ट।
वो भी एक बिल्डिंग ही है, लेकिन वहाँ जाके क्यों शांति का अनुभव होता है? क्योंकि वहाँ रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका जीवन, थोड़ा जीवन की शैली वो बाहर के जो जनरल नेचर लोग होते हैं उनके तुलना में थोड़ी अलग होती है, वो आध्यात्मिक प्रधान होती है। जब दूसरे लोग भी वहाँ जाते हैं, उस समय टेम्परेरी थोड़े समय के लिए उनकी विचारधारा में भी परिवर्तन, इस प्रकार से वहाँ का वातावरण जो है स्पिरिचुअली चार्ज्ड हो जाता है।
करेक्ट।
और इसके कंट्रास्ट में कभी कहीं कोई नाइट क्लब्स वगैरह है या कोई ऐसे बार वगैरह में जब जाते हैं, वहाँ का वातावरण थोड़ा निगेटिवली चार्ज, तो वैसे ही विचारधारा मनुष्य में आती है।
करेक्ट।
तो इसलिए बाहर की नेचर और इंटरनल नेचर, इन दोनों का संबंध है, और हम बहुत हद तक बाहर की नेचर को परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत हद तक, इसके काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं और वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस कारण से जब ये इनके द्वारा हम बाहर की नेचर को परिवर्तित कर सकते हैं, तो हमारा ये कहना है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन्स कुछ इस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाले हैं, कि जब कोई डिजास्टर्स आते हैं, अर्थक्वेक हैं, फ्लड्स हैं, फेमिन्स हैं, सुनामी हैं, साइक्लोन वगैरह, तो हम फिजिकल जो मीन्स हैं उनका तो इस्तेमाल करें ही जब भी कोई आपदा आती है, तो बाहर के साथ साथ, लेकिन आवश्यकता यह है कि बाहर जैसे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की, कंबल, खाना पीना, पानी आदि, वो एसेंशियल है,
बिल्कुल,
वो तो ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ अगर हम उन कंसर्न व्यक्तियों को जो प्रभावित हैं उनको अगर इंटरनली एम्पावर करेंगे, तो क्या होगा कि वो जो आपदा तो थोड़ी देर के लिए आती है, थोड़े समय के लिए, लेकिन अपना प्रभाव वो बहुत लंबे समय के लिए छोड़ जाती है।
करेक्ट।
तो इस कारण से उस प्रभाव को किस प्रकार से वो झेल सकें, किस प्रकार से अपने जीवन को नॉर्मलाइज कर सकें, ये आवश्यकता है उनकी विचारधारा को परिवर्तित, अगर हम कितने हद तक कर सकते हैं योग के द्वारा, मेडिटेशन, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी के द्वारा आदि आदि, तो उनके जीवन में बहुत सामान्य जीवन बहुत जल्दी लौट आता है और अपने जीवन में फिर से वो सुख शांति और खुशी का एहसास कर सकते हैं।
भाई जी, कई बार ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं नेचर की, नेचर में ये 5 एलिमेंट्स हैं
जी,
लेकिन हमारा जो नेचर है, इनर नेचर है, इस जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मेरे मतलब मेरे जिंदगी जीने की शैली ही ऐसी है, तो इंटरनल नेचर के बारे में आप हमें थोड़ा सा संक्षेप में बता सकते हैं कि एग्जैक्टली इंटरनल नेचर है क्या?
इंटरनल नेचर माने व्यक्ति का स्वभाव, संस्कार, और वो बनता है जैसी जैसी वो अपनी हैबिट्स को इनकल्केट करता है, धारण करता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको भी ख्याल होगा, कभी कोई भी मनुष्य है, मान लीजिए पहली बार कोई कार्य करता है, उसे थ्योरेटिकली मालूम है ये गलत है, मान लीजिए स्मोकिंग शुरू करता है, तो पहली बार उसे लगता है कि भाई ये करूँ ना करूँ, क्यों करना चाहिए, एक दो बार वो जैसे भयभीत जैसा भी होता है, लेकिन जब वो आदत कंटिन्यूसली 2 बार 4 बार 10 20 बार करता है, वो आदत बन जाती है, तो फिर बाद में उसे उस कार्य को करने में कोई भी हिचक महसूस नहीं होती। कोई छोटी सी चोरी भी करेगा शुरू में, पहली बार दूसरी बार उसे हिचक होगी, लेकिन बाद में पक्का चोर बन जाएगा तो उसे कुछ इस बात की हिचक नहीं। इसीलिए शायद किसी ने जो आदत शब्द को ना, हैबिट को, वो बयान भी इसी रीति से किया है, ये वर्ड है HABIT, हैबिट, आदत है, तो आदत, हैबिट्स डाई हार्ड कहते हैं, एक बार आदत पड़ गई किसी चीज़ की तो उसको बदलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हैबिट्स, तो ये वर्ड ही ऐसा है, HABIT, इफ यू रिमूव एच स्टिल इट रिमेन्स ए बिट, समथिंग इज देयर, इफ यू रिमूव ए बिट इट रिमेन्स, स्टिल इफ यू रिमूव बी स्टिल इट रिमेन्स इट, और कई बार हंसी में कहते हैं इवन इफ यू रिमूव आई टी, यानी आदमी अगर टी टोटलर तो रहता है, चाय की आदत भी उसको कई बार जीवन में ना छोड़नी बड़ी मुश्किल प्रतीत होती है।
करेक्ट।
तो भाव क्या है कि हैबिट्स जो है वो ही स्वभाव संस्कार बनते हैं, वो ही आदत बन जाती है और वो ही व्यक्ति की नेचर बन जाती है धीरे, इंटरनल नेचर।
बिल्कुल।
और इसके विपरीत अगर कोई बहुत आध्यात्मिक सॉफ्ट वातावरण में है, पारिवारिक वातावरण है, आध्यात्मिक वातावरण है, उसके अंदर नेचुरली उस व्यक्ति के संस्कार ऐसे होंगे स्नेह के, मधुर होंगे, एक दूसरे के प्रति बहुत समरसता के भाव होंगे। तो जो भी इंटरनल नेचर जो हैबिट आप बता रहे हैं, स्वभाव संस्कार, वो व्यक्ति की आदत से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं, और आदत प्रभावित होती हैं व्यक्ति के थॉट प्रोसेस से। क्योंकि आदत बनती बाद में, कर्म में बाद में आती है, पहले व्यक्ति के मन में संकल्प चलता है कोई भी चीज़ का। मानो आज कोई व्यक्ति ड्रिंक करने चला है अल्कोहल, तो पहले उसके मन में संकल्प आएगा, उसमें होगा करूं ना करूं, संकल्प आएगा। संकल्प के साथ हो सकता है वो वाणी में आ जाए, वो डिस्कस करे, और उसके बाद वो बात फिर कर्म में आती है। तो कर्म में आए, संस्कार बने, उसके बाद हम अगर उसे बदलना चाहें, वो बदलना भी व्यक्ति के थॉट प्रोसेस पर निर्भर करता है। क्योंकि थॉट के अंदर जितनी मजबूती होगी उसके आधार पर ही व्यक्ति वो संस्कार संकल्प को उनको बदल सकेगा। तो थॉट के ऊपर ही, मन के ऊपर ही सब चीज़ों का आधार है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो जिसने मन को कंट्रोल में थोड़ा कर लिया, संकल्पों को, विचारों को, थॉट्स, इसीलिए कोर्सेज होते हैं, और कोर्सेज तो होते हैं या स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट आदि आदि अलग, लेकिन एक कोर्स है माइंड मैनेजमेंट, कैसे माइंड को मैनेज किया जाए, उसके अंदर यही बातें सारी बताई जाती हैं। और जब एक बार व्यक्ति को माइंड मैनेजमेंट करने का थोड़ा सा आधार उसके पास आ जाता है ना, तो हो सकता है शुरू शुरू में उसे अपने विचार को बदलना बड़ा कठिन प्रतीत होता हो। कोई भी चीज़ नई धारण करेंगे शुरू में नहीं, आपको बचपन में याद होगा, मानो साइकिल चलानी शुरू करी तो पहली बारी तो एकदम दो पहिए पर नहीं चली, दो चार बार गिरे होंगे। पहली बार रोटी बनानी शुरू करी, गोल तो बनी नहीं होगी।
बिल्कुल।
तो ऐसे ही शुरू में, लेकिन अक्सर करके मनुष्य क्या करते हैं, कोई भी नई आदत शुरू करते हैं, मुश्किल प्रतीत होती है तो फिर उसे छोड़ देते हैं। अगर आपने भी साइकिल चलानी छोड़ दी होती तो शायद नहीं आगे हो पाता।
जैसे कि मैंने ट्राई किया था बचपन में, लेकिन हुआ नहीं, एक दो बार गिर गई, उसके बाद छोड़ ही दिया, तो आज तक नहीं आता मुझे साइकिल चलाना। ये तो बस एक वो आत्मविश्वास की बात होती है कि करना ही है, वो अगर थोड़ी सी भी कमी हो जाएगी तो फिर आप वो नहीं कर पाते।
राइट। तो इसलिए कोई भी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट कहा जाता है ना।
करेक्ट।
तो कोई भी बात को हम जो करना चाहते हैं उसको दो चार कठिनाइयों के वशीभूतों के छोड़ ना दें। एक बार करें, दो बार करें। मुझे याद है मैंने भी जब योग करना शुरू किया, आई वॉज वेरी यंग, दिमाग भाग जाता था, आधा घंटे बैठेंगे तो शायद 28 मिनट 29 मिनट भाग जाता था, एक दो मिनट बड़ी मुश्किल से टिकता था। लेकिन अगर हम उस वक्त छोड़ देते, ये तो बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकता, तो शायद और आगे नहीं बढ़ पाते। करते गए तो बाद में 25 मिनट भागा, उसके बाद 20 मिनट माइंड भागा होगा, 10 मिनट टिका होगा, लाइक दैट। तो ऐसे करते करते ना अभी काफ़ी हद तक अभ्यास ये हो गया कि मे बी अप टू सम 80-90% तक माइंड और थॉट्स को कंट्रोल करने का एक ऐसी विधि आ गई है कि उसको सहज रीति से कर सकते हैं।
बिल्कुल।
तो कोई भी अगर संस्कार बदलना चाहते हैं, इंटरनल नेचर बदलना चाहते, जैसे आपने कहा ना, तो उसके लिए ये आवश्यक है उस बात को हम छोड़ ना दें।
करेक्ट।
कोई भी मुश्किल जरूर लगेगी, असफलताएं आएंगी, लेकिन उसको छोड़ ना दें, करते रहेंगे तो बहुत जल्दी ऐसा समय आ जाएगा कि हम उस पर नियंत्रण पा लेंगे।
भाई जी, कई बार ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति ने हमारे साथ ये किया, बाढ़ की वजह से इतने सारे लोगों ने इतना दुख झेला, या फिर फ्लड्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी कैलामिटीज है जिसकी वजह से हम सभी ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज़्यादा फेस करते हैं प्रकृति को। लेकिन क्या हमारी जो नेचुरल प्रकृति है उसका कनेक्शन है हमारे नेचुरल कैलामिटीज पर, या ऐसा ही रियलिटी है?
देखिए दोनों बातें कुछ परसेंटेज में आपस में कनेक्टेड हैं
जी।
हमारी प्रकृति का भी कनेक्शन है, क्योंकि मनुष्य के कर्मों की गति कहा जाता है बहुत गुई है।
अच्छा।
हाँ, तो कर्म करते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग जगह के मनुष्य होते हैं, एक प्लेन क्रैश हुआ इकट्ठे 200-250-300 मर जाते हैं। अब अलग अलग जगह अलग अलग कर्म वाले, अलग अलग सब वाले, लेकिन कोई चीज जरूर ऐसी है जहाँ उन्हें कॉमन पॉइंट डेथ तक ले आई।
करेक्ट।
तो कर्म डिपेंड करते हैं मनुष्य की स्वभाव संस्कार प्रकृति पर, जो भी कर्म मनुष्य करता है। तो इस कारण से कर्मों के आधार पर भी ये बाहर की प्रकृति का संबंध है। इसीलिए देखेंगे किसी जगह बहुत प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उस जगह के मनुष्यों के कर्मों का संबंध जरूर ऐसा होगा कि उन्हें वो प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ रही हैं, और किन्हीं जगह कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती।
करेक्ट।
हमें भी याद है जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे तो भारत को ही ना 5-6 पार्ट में डिवाइड करके भी ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है और ये बड़े स्टेबल जोन है, और इस प्रकार से कहा जाता था। अब ये भी किसी ना किसी कर्म पिछले कर्मों के आधार पर वो ऐसी जगह सेटल हुए हैं कि वहाँ पर उन्हें वो प्रकृति का कोप झेलना नहीं पड़ रहा, और किसी जगह वालों को बहुत झेलना पड़ता है।
बिल्कुल।
इसीलिए एक तो मनुष्य के कर्मों का आधार इसके साथ कनेक्टेड है, और दूसरा प्रकृति भी ये क्यों कर रही है, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है, क्लाइमेट चेंज है, डिप्लीशन इन ओजोन लेयर है, ये जितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं ना, और इनके जो कारण हैं, इस पर मनुष्य का काफ़ी हद तक इससे संबंध है।
अच्छा।
ग्लोबल वार्मिंग, आज क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं सारी दुनिया में, मौसम का परिवर्तन, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। अभी हाल ही में फ्रांस में पेरिस में COP15 पूरी होके गई है, तो उसके अंदर भी डिस्कस ये सारा किया गया। तो उसका मुख्य भाव यह है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन।
करेक्ट।
हमारा लग्जूरियस लाइफ स्टाइल, वो भी काफ़ी हद तक डिपेंड है। ग्लोबल वार्मिंग और क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग बट ये इससे हमारे कर्मों से डायरेक्ट कनेक्ट है। किस प्रकार से वार्मिंग, कि एक तरफ मनुष्य की पॉपुलेशन बढ़ रही है।
करेक्ट।
और दूसरी तरफ पेड़ जंगल के कट रहे हैं।
करेक्ट।
तो पेड़ दे आर नथिंग बट द प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो ये एक साइकिल है। तो काफ़ी हद तक ये कुछ साल पहले तक काफ़ी बैलेंस्ड थी साइकिल, तो जितना मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता था, प्लांट्स इतने थे कि वो उसे कन्वर्ट करके मनुष्य को दे देते थे और सब चलता था।
बिल्कुल।
अभी कुछ वर्षों से, पिछले विशेष करके जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा शुरू हुआ है, तब ज़्यादा लकड़ी की आवश्यकता है, हर चीज़ की ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलेशन को हमें फीड करना है, तो इस कारण से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए ज़्यादा लकड़ी काटने की जो ज़रूरत है, तो जंगल कट रहे हैं, तो नेचुरली लेस ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल।
करेक्ट।
ड्यू टू लेस फॉरेस्ट। और एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो मोर पॉपुलेशन मीन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फियर। तो ये एक्युमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फियर, ये ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। और उसके कारण क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक विशेषता होती है, ये हीट रिटेंशन कैपेसिटी होती है, इसमें गर्मी को अपने अंदर रिटेन करके रखती है। तो इसीलिए क्या है कि पूरे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं आदि आदि, सी सरफेस बढ़ रही है। तो साइंटिस्ट का ये बिलीव था, और पहले तो बिलीव था, अब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं उसे कि मोर फ्लड्स हैं, मोर ग्लेशियर मेल्टिंग है आदि आदि, इस कारण से सीजन्स का इम्बेलेंस जो हो रहा है। अभी देख रहे हैं कहीं बर्फबारी, बहुत बर्फ़ पड़ रही है, कहीं बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी के मौसम में ठंडी हो रही है, ठंडी के मौसम में बरसात हो रही है। अब चेन्नई में जो हमने देखा अभी हाल में, वहाँ कितनी बरसात हो गई, ये सब क्लाइमेट चेंज का ही कारण है। साथ ही साथ ये अभी अमेरिका में जो देखा, इतनी बर्फबारी हुई, इतनी ज़्यादा जो पिछले बहुत सालों से नहीं हुई, तो ये सारे कारण जो इनके लिए, हम ह्यूमन बीइंग्स वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो हमारे कर्म भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे पुराने संस्कार भी रिस्पॉन्सिबल हैं बाहर की प्रकृति के लिए, जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही है ना, उसके लिए मनुष्य बहुत बहुत हद तक जिम्मेवार है।
बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब आपने। इसमें इतनी सारी बातें हमने सीखी, जिसमें सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि हमारा जो नेचर है, इनर नेचर है, वो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति से कनेक्टेड है। तो अगर हम अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स के साथ में प्रोड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रकृति पर भी उसका प्रभाव होगा। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो।
धन्यवाद।
ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये जाना कि अगर हम अच्छे विचार पूरी प्रकृति को प्रदान करेंगे तो उसके रिजल्ट ये होगा कि हमें भी वो प्रकृति सपोर्ट करेगी। आउटर नेचर आपके इनर नेचर से कनेक्टेड है, तो अगर आप अंदर से अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार अगर एमिट करेंगे तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी आसपास की प्रकृति भी आपको साथ देने लगेगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।